ओ शांति। 11/7/74 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मुरली। मुरली में दी गई डायरेक्शन से ही सर्व कमियों से छुटकारा। दृष्टि और वृत्ति को सत्व प्रदान बनाने वाले, कर्म बंधनों से मुक्ति दिलाने वाले, सर्व शक्तियों की चाबी प्रदान करने वाले अति मीठे शिव बाबा ने पूछा, अपने को महादानी, सर्व शक्तियों के अधिकारी, त्रिमूर्ति बाप द्वारा प्राप्त हुए तीनों तख्त नशीन समझते हो? तीन तख्त कौन से हैं? एक है बेगमपुर के बादशाह बनने का साक्षी स्थिति में स्थित होने वाला साक्षीपन का तख्त। दूसरा है पावरफुल मास्टर, सर्वशक्तिमान बाप समान सबूत बनाने वालों का, बाप का दिल रूपी तख्त। तीसरा है भविष्य विश्व महाराजन का तख्त। क्या इन तीनों तख्तों के अधिकारी बने हो? तीनों तख्तों के अधिकारी की वर्तमान स्टेज कौन सी है? तीनों तख्तों की तीन विशेषताएं सुनाओ। साक्षीपन के तख्त की मुख्य निशानी कौन सी होगी? वह सदैव हर कदम हर संकल्प में बाप दादा को सदा साथी अनुभव करेंगे। जितना साथीपन का अनुभव होगा उतना ही अचल, अड़ोल और अति इंद्रिय सुख में रहेंगे। उनका हर बोल बाप के साथ दिखाई देगा। जैसे बाप दादा प्रैक्टिकल में सदा के साथी है, जिसे आप अलग करना चाहो तो भी नहीं कर सकते। जैसे दोनों साथियों के साथ का कभी कभी ऐसा भी अनुभव करते हो कि दो है वह एक है, ऐसे ही दो का साथ एक समान हो, एक ही नहीं लेकिन एक समान। समान को लोगों ने समाना कह दिया है, तो ऐसे अपने को क्या बाप दादा के साथी अनुभव करते हो? फॉलो फादर करते हो? जब फॉलो फादर है तो साक्षीपन और साथीपन का अनुभव हर सेकेंड व हर कदम में होना चाहिए। ऐसे साक्षीपन के अनुभवी ही तख्त नशीन होते हैं। दूसरा बाप के दिल तख्त नशीन वह होगा जो सपूत होगा, अर्थात बाप दादा को मनसा वाचा कर्मना व तन मन धन सब बातों में फॉलो करने का सबूत देगा। तीसरा है विश्व महाराजन बन विश्व के राज्य के तख्तनशीन बनने का। वह न सिर्फ कर्मेंद्रिय चित लेकिन वह साथ साथ प्रकृति चित भी होगा। ऐसा विकर्मा चित, कर्मेंद्रिय चित, प्रकृति चित, जगत चित बनता है। क्या ऐसे तीनों तख्तनशीन बने हो? अगर तीनों तख्त के अधिकारी बन गए तो ऐसे अधिकारी बाप के पास किसी भी प्रकार की क्यू में नहीं होंगे। जो कोई भी क्यू में है तो उन्हें किसी भी प्रकार के अधिकार की प्राप्ति नहीं। आज बाप दादा हर एक क्यू वाले को रिस्पॉन्स दे रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जी डालते हो कि यह कर दो वह कर दो। ऐसी अर्जी डालते हो तो यह याद नहीं आता कि बाप दादा बच्चों को स्वयं से भी ज्यादा हर कार्य में आगे रखता है। जब सर्वशक्तियां अर्थात पावर्स बच्चों को दे दी है तो ऐसे बालक सो मालिक अर्जी क्या डालते हैं? जैसे बाप कोई की भी बुद्धि का ताला खोल सकता है, वह संस्कार को बदल सकता है, तो क्या आप लोग नहीं कर सकते हो? आप लोगों की बुद्धि का ताला खुला है? इसमें तो ना नहीं कहेंगे ना? बाप दादा ने हर एक को बुद्धि का ताला खोलकर अनुभवी बनाया है ना? जैसे आप लोगों का बाप ने खोला, अनुभव कराया, तो अनुभव की हुई बात क्या स्वयं नहीं कर सकते हो? जैसे आप लोगों का खोला वैसे ही दूसरों का खोलो। दूसरों को ताला खोलना मुश्किल है क्या? ताले की चाबी कौन सी है? वह चाबी बाप ने आपको नहीं दी है क्या? जब से बाप के बच्चे बने हो तो जो बाप का सो आपका नहीं है क्या? चाबी भी आपकी है ना? चाबी है फिर भी बाप को कहते हो कि ताला खोलो, या समय पर चाबी मिलती नहीं है? बाप तो अपने पास सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी रखते हैं, बाकी बुद्धि का ताला खोलने की चाबी अपने पास नहीं रखते। बुद्धि का ताला खोलने की चाबी कौन सी है? सर्वशक्तियां, यही चाबी है। यह तो सबके पास है ना? दिव्य दृष्टि के दाता तो नहीं हो लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान तो हो ना? जब सर्वशक्तियों की चाबी बाप द्वारा प्राप्त हो चुकी है फिर भी अर्जी क्यों डालते हो? बाप को सर्वेंट बनाया है इसलिए ऑर्डर देते हो कि यह करो और वह करो। वानप्रस्थ तक पहुंचने वाले भी अभी तक छोटे हैं। अभी तो समय है अपनी रचना रचने का, प्रजा और भक्त माला बनाने का। रचयिता कहे कि मैं छोटा हूं तो रचना कैसे रचेंगे, इसलिए यह भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जी बाप को डालते हो। पहले चाबी को प्राप्त करो तो अर्जी स्वतः ही पूरी करेंगे। दूसरी बात, बाप को उल्हना देते हो। उल्हनों की भी क्यों है ना, किसी प्रकार का उल्हना कौन देता है? कोई भी बात का उल्हना तब दिया जाता है जब नॉलेजफुल नहीं है। यह क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पीछे क्यों आए, साकार में क्यों नहीं मिले, यह सब उल्हने है ना। अगर मास्टर नॉलेजफुल की स्टेज पर स्थित हो जाओ, त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित हो जाओ, तो कोई उल्हना देंगे क्या? उन्होंने से साकार तन के मिलने की प्राप्ति हो सकेगी? जब बीत चुका हुआ पाठ फिर से रिपीट होगा क्या? वह तो फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। तो नॉलेजफुल की स्टेज पर स्थित होने वाला कभी भी किसी प्रकार का उल्हना नहीं देगा। उल्हना अर्थात नॉलेज की कमी और लाइट माइट की कमी। तीसरी बात, कंप्लेंट्स करते हो, वह भी लंबी क्यों है ना? भिन्न भिन्न प्रकार की कंप्लेंट्स करते रहते हो, योग नहीं लगता, व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, या फलानी शक्ति धारण नहीं कर सकते। इन कंप्लेंट्स का कारण क्या है? व्यर्थ संकल्प। मुख्य कंप्लेंट मेजॉरिटी की यह दिखाई देती है। दूसरी मुख्य कंप्लेंट है वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। यह दोनों कंप्लेंट्स तब तक है जब तक रोज की मुरली द्वारा जो डायरेक्शंस मिलती रहती है उन डायरेक्शंस को अर्थात मुरली को ध्यान से सुनकर और धारण नहीं करते हैं। व्यर्थ संकल्प चलने का मूल कारण यह है जो ज्ञान का खजाना हर रोज बाप द्वारा मिलता है उस खजाने की कमी है। अगर सारा समय ज्ञान रत्नों से खेलने में व ज्ञान खजाने को देखने में सिमरन करने में बुद्धि को बिजी रखो तो क्या व्यर्थ संकल्प आ सकते हैं? पहले अपने आप से पूछो कि क्या मेरी बुद्धि सारा दिन ज्ञान के सिमरन में व विश्व कल्याण के प्लान्स बनाने में बिजी रहती है? जैसे लौकिक रीति में भी कोई कार्य में बुद्धि बिजी रहती है तो दूसरे संकल्प व दूसरी बातें नहीं आती है, क्योंकि बुद्धि बिजी है। आप लोगों को भी जिम्मेवारी व बाप द्वारा जो कार्य मिला है वह कितना बड़ा है और अब तक भी कार्य कितना रहा हुआ है। अभी विश्व की टोटल आत्माओं के हिसाब से 5 पांडव निकले हो, इतना रहा हुआ कार्य और साथ साथ अपने विकर्म को भस्म करने का कार्य है। कितने जन्मों के बोझ को भस्म करना है। 63 जन्मों के पाप कर्मों के खाते को भस्म करना है। साथ साथ ज्ञान के खजाने को सिमरन करते रहो तो क्या समय बच सकता है या कम पड़ेगा। 3 बातें सुनाई। 1 तो ज्ञान खजाने के सिमरन करने का कार्य, 2 विकर्म भस्म करने का कार्य, 3 विश्व के कल्याण का कार्य। ये तीनों ही विशेष और बेहद के कार्य है। इतना बुद्धि का काम होते हुए भी बुद्धि फ्री कैसे रहती है, फुर्सत कैसे मिलती है आप लोगों को? विश्व के कल्याण का कार्य समाप्त कर लिया है क्या? विकर्म भस्म कर लिए है क्या? इतनी कारोबार चलाने वाले व इतने बड़े कार्य के निमित्त बनी हुई आत्माएं फ्री रहे तो उसको क्या कहा जाए? अपने कार्य की नॉलेज नहीं व स्वयं को चलाने की नॉलेज नहीं, या अपनी दिनचर्या को सेट करने की नॉलेज नहीं। आजकल कौरव गवर्नमेंट के छोटे छोटे क्लर्क भी टाइम टेबल सेट कर सकते हैं, तो क्या आप मास्टर नॉलेजफुल? मास्टर सर्वशक्तिमान अपना टाइम टेबल सेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप स्वयं को अपनी सीट पर सेट नहीं करते हो, इसलिए अपसेट होते हो। अतः रोज अमृत वेले बाबा से मिलन मनाने के बाद व रूह रोहान करने के बाद रोज का टाइम टेबल सेट करो। जैसे स्थूल काम का प्रोग्राम सेट करते हो, वैसे व्यवहार के साथ परमार्थ का प्रोग्राम भी सेट करो। व्यर्थ संकल्प चलना अर्थात ताजदारी नहीं बने हो। ताज है जिम्मेवारी का, स्वयं की जिम्मेवारी और विश्व की जिम्मेवारी। अगर आप भी बार बार ताज को उतार देते हो व ताजदारी नहीं बन सकते हो, तो भविष्य में ताजदारी कभी बन नहीं सकते। अभी से प्रैक्टिस चाहिए भविष्य ताजदारी और तख्तदारी बनने की। साक्षीपन का तख्त और बाप दादा के दिल का तख्त। तो अभी से ताज और तख्तदारी बनेंगे तब भविष्य में भी ताज और तख्त प्राप्त कर सकेंगे। अपना टाइम टेबल सेट करो व स्वयं ही स्वयं का शिक्षक बन स्वयं को होमवर्क दो। जैसे शिक्षक स्टूडेंट को होमवर्क देते हैं ना, इसमें बुद्धि बिजी रहे। इस प्रकार रोज अपने को होमवर्क दो और फिर साक्षी होकर चेक करो कि होमवर्क में बिजी है या माया के आकर्षण में होमवर्क भूल गए हैं। तो फिर कंप्लेन समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात है वृत्ति और दृष्टि के चंचल होने की। प्रेजेंट समय भी मेजॉरिटी की रिजल्ट में देखे तो 50% अभी भी है जिनकी यह कंप्लेंट्स है। संकल्प में, स्वप्न में और कर्म में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। वृत्ति और दृष्टि चंचल क्यों होती है? कोई भी चीज चंचल क्यों होती है? कारण क्या है? कोई भी चीज हिलती क्यों है? हिलने की मार्जिन है तब तो हिलती है। अगर वह फुल अर्थात संपन्न हो तो हिलेगी। तो दृष्टि और वृत्ति चंचल होने का कारण यह है। जो बाप ने स्मृति सुनाई उसके बजाय विस्मृति की मार्जिन है, तब हिलती है वह चंचल होती है। अगर सदा स्मृति स्वरूप हो, स्मृति संपन्न हो, तो वृत्ति और दृष्टि को चंचल होने की मार्जिन मिल नहीं सकती। इसके लिए बहुत छोटा सा श्लोगन भूल जाते हो। लौकिक में भी कहते हैं, बुरा न देखो, बुरा न सोचो और बुरा न सुनो। अगर इस श्लोगन को भी सदा स्मृति में रखो व प्रैक्टिकल में लाओ कि देह को देखना अर्थात बुरा देखना है, देहधारी प्रति सोचना व संकल्प करना यह बुरा है। देहधारी को देहधारी समझ उससे बोलना यह बुरा है। इसलिए अगर यह साधारण श्लोगन भी प्रैक्टिकल में लाओ तो दृष्टि और वृत्ति चंचल नहीं होगी। जिस समय वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है तो उस समय स्वयं को यह समझाना चाहिए कि क्या मैंने सर्व संबंधों की सर्व रसनाएं बाप द्वारा प्राप्त नहीं की है। कोई रस रह गया है क्या कि जिस कारण दृष्टि और वृत्ति चंचल होती है? जिस संबंध से भी वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है उसी संबंध की रसना यदि बाप से लेने का अनुभव करो तो क्या दूसरी तरफ दृष्टि जाएगी? समझो कोई मेल की फीमेल की तरफ दृष्टि जाती है या फीमेल की मेल की तरफ जाती है तो क्या बाप सर्वरूप धारण नहीं कर सकता? साजन व सजनी के रूप में भी बाप से सजनी बन व साचन बनकर अति इंद्रिय सुख का जो रस सदाकाल स्मृति में और समर्थि में लाने वाला है वह अनुभव नहीं कर सकते हो? बाप से सर्व संबंधों के रस व स्नेह का अनुभव न होने के कारण देहदारी में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। ऐसे समय में बाप को धर्मराज के रूप में सामने लाना चाहिए और स्वयं को एक रौरव नरकवासी व विष्ठा का कीड़ा समझना चाहिए और सामने देखो कि कहां मास्टर सर्वशक्तिमान और कहां मैं इस समय क्या बन गया हूं। रौरव नरकवासी विष्ठा का कीड़ा, ऐसे स्वयं का रूप सामने लाओ और तुलना करो कि कल क्या था और अब क्या हूं। तख्त नशीन से क्या बन गया हूं? तख्त ताज को छोड़ क्या ले रहा हूं? गंदगी। तो उस समय क्या बन गए? गंदगी को देखने वाला वह धारण करने वाला कौन हुआ? गंदा काम करने वाले को क्या कहते हैं? बिल्कुल जिम्मेवार आत्मा से जमादार बन जाते हो। क्या ऐसे को बाप दादा टच कर सकता है? स्नेह दृष्टि दे सकता है? अरसी मान सकता है? कंप्लेंट व उल्हना सुन सकता है? इतने नॉलेजफुल होने के बाद भी वृत्ति और दृष्टि चंचल हो तो उसे भक्त आत्मा से भी गिरी हुई आत्मा कहेंगे। भक्त भी किसी युक्ति से अपनी वृत्ति को स्थिर करते हैं तो मास्टर नॉलेजफुल भक्त आत्मा से भी नीचे गिर जाते हैं। तो क्या ऐसी आत्मा की कोई प्रजा बनेगी? जमादार की कोई प्रजा बनेगी क्या? या वह स्वयं प्रजा बनेंगे? अपना एक फोटो निकाल रखो, जैसे कोई गंदगी उठाने वाला हो और टोकरे पर टोकरा गंद का उठाया हो। ऐसा चित्र निकाल बुद्धि में रखो। जिस समय वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है उस समय वह फोटो देखो, जैसे बाप दादा ने भविष्य प्रालप्त की फोटो निकलवाई, क्योंकि चित्र को देख चरित्र स्मरण आएगा। ऐसा चित्र जब सामने आएगा तो क्या शर्म व लज्जा नहीं आएगी? एक तरफ मास्टर सर्वशक्तिमान का चित्र, दूसरी तरफ वह चित्र रखो तो अपने आप ही मालूम पड़ जाएगा कि हम क्या बन गए। मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे अभी तक भी वृत्ति और दृष्टि का चंचल होना शोभता नहीं है। पहली गलती तो यह है कि शरीर को क्यों देखते हो? तुमको तो मस्तक में आत्मा को देखना है ना? मस्तक में मणि है ना? मस्तक में मणि के बजाय सांप को क्यों देखते हो जिससे विष की प्राप्ति हो जाती है? पहली गलती तो यह करते हो कि जो मस्तक के बजाय शरीर को देखते हो। कई कंप्लेन करते हैं कि वातावरण और संग ऐसा है, साथी ऐसे हैं, दफ्तर में बिजनेस में काम करना पड़ता है, संपर्क में आना पड़ता है। संपर्क में आते, बातचीत करते, मस्तक के सिवाय और कहीं देखते ही क्यों हो? दूसरी बात, वातावरण के वशीभूत होने वाले अपने आप से पूछे कि हमने बाप के साथ साथ किस बात का ठेका उठाया है। ठेकेदार होना आप सब लोग, नरक को बदलकर स्वर्ग बनाना, प्रकृति के तमोगुण को सत्वगुण में परिवर्तन करना, यह ठेका उठाया है ना? प्रकृति को बदलने वाले स्वयं ही बदल जाते हैं। ठेका उठाया है पांच तत्वों को बदलने का और वशीभूत फिर वातावरण के हो जाते हो। जिस समय वातावरण के वशीभूत हो जाते हो उस समय स्थूल उदाहरण सामने रखो। अगरबत्ती कब वातावरण के वशीभूत नहीं होती है? वातावरण को बदलने के लिए अगरबत्ती है तो आपकी रचना में अगरबत्ती बनने वाला कौन? मनुष्य आत्मा। तो आपकी रचना में यह विशेषता है और रचयिता में नहीं। तो रचयिता हुए या कमजोर हुए, इस कंप्लेन को भी अपनी स्मृति और युक्ति द्वारा समाप्त करो। मुख्य यह दो कंप्लेंट्स है, एक तो पार्टी से मिलते हो तो यह कंप्लेन ही विशेष आती है, इसलिए ड्रामा अनुसार बार बार यही बातें करना और बार बार बाप द्वारा यही शिक्षा मिलना, इसका भी हिसाब किताब बनता है। इसलिए ड्रामा अनुसार अब तक भी स्पेशल सर्विस लेना, यह भी पाठ समाप्त हो रहा है। इसमें भी रहस्य है, वही बात कई बार पूछते हैं, एक वर्ष वायदा करके जाते हैं कि अगले वर्ष यह कंप्लेन नहीं होगी, दूसरे वर्ष फिर दोबारा कहते हैं कि अगले वर्ष नहीं होगी। जो वर्ष बीता वह किस खाते में गया? समझते हैं कि बाप दादा को वायदा भूल जाता है, समझते हैं बाप दादा को क्या याद होगा। बाप दादा को सबके वायदे याद रहते हैं, लेकिन बाप दादा बच्चों का डिसरिगार्ड नहीं करते। सामने बैठ कहे कि वायदा नहीं निभाया, यह भी डिसरिगार्ड है। जब सिर का ताज बना रहे हैं, स्वयं से भी आगे रख रहे हैं, तो ऐसी आत्मा का डिसरिगार्ड कैसे करेंगे? इसलिए मुस्कुराते हैं। ऐसे नहीं कि याद नहीं रहता है, आत्माओं को तो चला देते हैं। निमित्त बनी हुई टीचरों को बड़ी चतुराई से चला देते हैं। कहेंगे आपने हमारे भावार्थ को नहीं समझा, हमारा भाव यह नहीं था, शब्द मुख से निकल गया। लेकिन बाप दादा भाव के भी भाव को जानता है, उससे छिपा नहीं सकेंगे। टीचर फिर भी समझेंगे मेरे से गलती हो गई, हो सकता है, लेकिन बाप से तो नहीं हो सकती है ना। इसलिए अब छोटी छोटी बातों के लिए समय नहीं, यह भी व्यर्थ में ऐड हो जाता है। बाप से जितनी मेहनत लेते हो उतना रिटर्न करना होगा। व्यक्त रूप में मेहनत ली, अव्यक्त रूप में भी कितने वर्ष हो गए, छठा वर्ष चल रहा है। अव्यक्त रूप में भी 6 वर्ष इन्हीं बातों पर शिक्षा मिलती रही। अब तक भी वही शिक्षा चाहिए। अभी सर्विस लेने का टाइम है अथवा रिटर्न करने का टाइम है। अगर रिटर्न नहीं करेंगे तो प्रजा नहीं बना सकेंगे। इसलिए अब स्वयं को पावरफुल बनाओ, नॉलेज फुल बनाओ। अनेक प्रकार की क्यू से स्वयं को मुक्त करो। युक्ति जो मिलती है उसको काम में नहीं लगाते हो, इसलिए मुक्त नहीं हो पाते। अच्छा, यह हुआ क्यू का रिस्पॉन्स। अब बाप दादा बच्चों से विदाई लेते हैं। अच्छा, इस मुरली का सार है। पहली पॉइंट है साक्षीपन का तख्त, बाप दादा का दिल तख्त और विश्व के राज्य भाग का तख्त। इन तीनों तख्तों का अधिकारी बाप के पास किसी भी प्रकार की क्यू में नहीं होगा। दूसरी पॉइंट है बुद्धि का ताला खोलने की चाबी है सर्वशक्तियां। इनको प्राप्त करने से भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जियां बाप दादा के पास डालनी बंद हो जाएंगी। तीसरी पॉइंट है नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित होने वाला कभी भी किसी भी प्रकार का उलहना नहीं देगा। चौथी पॉइंट है रोज की मुरली द्वारा जो डायरेक्शन मिलती रहती है उन डायरेक्शंस अर्थात मुरली को ध्यान से सुनकर और उसे धारण करने से व्यर्थ संकल्प और वृत्ति और दृष्टि का चंचल होना, यह दोनों मुख्य कंप्लेंट्स समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।